संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे कृष्ण। भक्तमाल की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो नाभा जी ने 24 अवतारों का वर्णन किया, 16 पार्षदों का वर्णन किया और द्वादश भक्तों का, यानी 12 महाभागवत का। महाभागवत क्या होते हैं? महाभागवत वो हैं जो 12 भगवान के ऐसे भक्त हैं जो अति श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम जो भक्तों की सूची में हैं उन्हें महाभागवत कहते हैं। और वो 12 ही हैं, भगवान शंकर हैं, ब्रह्मा जी हैं, सनकादिक हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, नारद जी हैं, कपिल जी हैं, मनु जी हैं, प्रहलाद जी हैं, बलि जी हैं और यमराज जी हैं, भीष्म जी हैं। ये 12 महाभागवत हैं। तो इनमें इनके हम वर्णन करते हैं। तो नारद जी का चरित्र बताते हैं। नारद जी इस कल्प से पूर्व कल्प की बात है। पहले कल्प में नारद जी पहले कल्प में भी भगवान ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आरंभ होता है, कल्प की शुरुआत होती है, तो उस समय जितने भी ऋषि प्रकट होते हैं भगवान से, भगवान ब्रह्मा से, वो सबको ही सृष्टि रचने के लिए कहते हैं। तो नारद जी ने मना कर दिया, जैसे इस कल्प में भी उन्होंने मना किया था, पिछले कल्प में भी उन्होंने मना कर दिया कि जी हम तो ये विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम ये मैथुन सृष्टि नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो उन्होंने श्राप दिया कि जा, एक नहीं 50 स्त्रियों से तुम्हारा विवाह होगा और तुम अपनी स्थिति से गिर जाओ, क्योंकि पिता की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो तुम। तो वो अपनी स्थिति से गिर के, यानी देवर्षि से गिर करके स्थिति से वो एक गंधर्व बने और गंधर्व उनका नाम हुआ उपबरहण, उपबरहण उनका नाम हुआ। और चित्ररथ नाम के गंधर्व हैं जिनकी 50 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। 50ों के साथ वो अपना रमण करने लगे। एक बार नारद जी यानी उपबरहण उस समय पुष्कर धाम में, जो ब्रह्मा जी का धाम माना जाता है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि प्रत्येक कल्प में जो हमारे जितने भी धाम हैं वो जोके तो प्रकट होते हैं प्रत्येक धाम में, जैसे पुष्कर जी हैं, काशी जी हैं, अयोध्या जी हैं, वृंदावन हैं, वो प्रत्येक कल्प में रहते हैं क्योंकि प्रत्येक कल्प में भगवान आते हैं। तो उस कल्प में भी, यानी इससे पिछले वाले कल्प में भी, वो पुष्कर में थे। पुष्कर में वो साधना के लिए गए हुए थे। साधना के लिए गए तो वहाँ पर रंभा नाम की जो अप्सरा है उन पे मोहित हो गए नारद जी, उन पे मोहित हुए, यानी उपबरहण उन पे मोहित हो गए। उन पे मोहित हुए तो अनाचार हुआ। अब वो हुआ तो ब्रह्मा जी ने वहाँ पे कि तुम यहाँ पे आए हो किस काम के लिए और यहाँ पे तुम क्या सोच रहे हो मन में, तुम्हारे ये सब चल रहा है, उनको वहाँ पे श्राप हुआ कि तुम दासी पुत्र हो जाओ। तो उस वो जन्म छोड़ के ये अगले जन्म में बने दासी पुत्र। घर में ये था कि खाने तक के लाले थे, खाना भोजन समय पर नहीं मिलता था, कुछ भी व्यवस्था घर में नहीं थी। पिता की या कारण मृत्यु हो चुकी थी, अकेली माँ थी और इनकी 4-5-6 साल की अवस्था रही होगी नारद जी की, तो बड़े दुख में जीवन चल रहा था। उसी समय चौमासा करने के लिए कुछ ऋषि लोग आए और वहाँ ऋषियों के वहाँ पे ये बर्तन साफ़ किया करती थी इनकी माँ, और वो जो बर्तनों में भोजन रह जाती थी ऋषियों की झूठन, वो ये खुद भी खाती थी और अपने बेटे को खिलाती थी। अब वो ऋषियों की झूठन थी तो उससे इनकी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई नारद जी की, वो झूठन खा खा के, कि ये उन ऋषियों के ही साथ में रह के प्रवचन करने लगे, भगवान की प्रवचन सुनने लगे और भगवान में इतनी तल्लीनता हो गई इनकी कि 4 महीने में इनकी पूर्ण पवित्र निर्मल बुद्धि हो गई और भगवान में ध्यान लग गया इनका। ये चाहने लगे, जब वो छोड़ के जाने लगे, 4 महीना हो गया और वो ऋषि जाने लगे, तो ये रोने लगे कि हमें अपने साथ लेके जाओ, हम आपके साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्ति, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान प्राप्ति होगी। ऋषि लोग तो चले गए। इनके मन में आया ये जंगल में जा नहीं सकते भगवान की तपस्या करने के लिए, क्योंकि माँ है, माँ को छोड़ के नहीं जा सकते, माँ रोकती थी इन्हें बार बार। अब इनके मन में दृढ़ वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार के लिए। तो अचानक उस दृढ़ वैराग्य के कारण और इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, ये भगवान हमारी माँ ना होती तो हम तुम्हारे मिलन के लिए आ जाते। तो अगले ही दिन जैसे ही माँ गाय की वो निकालने गई, दूध निकालने गई, दूहने गई, तो सांप ने काटा और माँ मर गई। लेकिन इनके सर पे, इन्होंने बोल तो दिया था लेकिन इनके सर पे पहाड़ टूट पड़ा कि माँ का वियोग, एक 4-5 साल के बच्चे को कितना बड़ा भारी वियोग होता है, बहुत बड़ा भारी वियोग इन्हें हुआ। बहुत रोए लेकिन क्या कर सकते थे, होनी है वो चल बसी। अब ये छोड़ छाड़ के अपना सब कुछ ये चले गए जंगल की तरफ। जंगल में फिर भगवान नारायण का ही ध्यान करते रहे, जैसे ऋषियों ने बताया था उसी तरीके से ध्यान करते 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 इनको एक बार ये एक वृक्ष के नीचे बैठे और वैसे ही इन्होंने ध्यान लगाया हुआ था भगवान में, बहुत समय व्यतीत हो गया था तो इनका प्रत्यक्ष ध्यान हो गया और ध्यान में इनको नारायण की छवि प्रकट हो गई इनके, और भगवान नारायण प्रत्यक्ष ध्यान में प्रकट हुए और ये तो आनंद से मतलब खिल उठे, इनका तो तन मन आनंद से खिल उठा। और वो लेकिन कुछ समय की वो छवि थी, वो जैसे ही इनकी गायब हुई तो नारद जी फिर रोने लगे, फिर ये वन में घूमने लगे रोते हुए कि कहाँ चली गई वो छवि, भगवान को पुकारने लगे आओ आओ। तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी अगले जन्म में, लेकिन तुम अपना ये जो तुम्हारा कर्म है इसको छोड़ो मत, करते रहो, इससे ही तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। तो हुआ भी वैसे ही, अगला जन्म इनका जो फिर ये वो जन्म इनका जैसे व्यतीत हुआ तो ये कल्प शुरू हुआ। इस कल्प के शुरू में ही ये फिर से ब्रह्मा जी से प्रकट हुए नारद जी। फिर ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि भाई सृष्टि, इन्होंने मना कर दिया, महाराज हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को पिछला याद था कि ये तो पहले भी नहीं कर सके थे, तो इस बार इन्होंने श्राप व्राप कुछ नहीं दिया कि ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है। तो नारद जी जो है घूमते हैं, भगवान के लीलाओं का गान करते हैं और आनंद में रहते हैं। ये श्री नारद जी हैं भगवान के द्वादश भक्तों में। अभी भीष्म जी का हम चरित्र करते हैं। भीष्म जी 12 भागवतों में, पूरी सृष्टि में 12 भागवतों में इतने श्रेष्ठ माने जाते हैं भीष्म जी। तो भीष्म जी पूर्व जन्म में क्या थे, ये 8 वसुओं में से एक द्यो नाम के वसु थे। एक बार वशिष्ठ जी की जो गाय थी उनका हरण कर लिया था, उस श्राप के कारण इन्हें मृत्युलोक में आना पड़ा। लेकिन मृत्युलोक में वसु आ रहे हैं, 8 वसु आ रहे हैं, तो गंगा जी ने इन्हें अपना पुत्र बनाने के लिए राजी हुई गंगा मैया, और शंतनु से माँ गंगा के शंतनु के ये 8 पुत्र बने। लेकिन गंगा ने शंतनु के इन पुत्रों को उत्पन्न करने की एक शर्त रखी थी कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं कहाँ ले जा रही हूँ पुत्रों को, क्या कर रही हूँ। तो जब 7 पुत्रों को उन्होंने, जो भी पैदा होते थे शंतनु जी से, उन पुत्रों को गंगा जी में प्रवाहित करती, तो वो उससे क्या होता था, वो मरते ही सीधे अपने लोक को पहुँच जाते थे। 7 तो पहुँच गए, 8वें ये थे भीष्म जी। ये हुए तो ये छीन लिए शंतनु ने कि ये हम नहीं देंगे, आपने 7 पुत्र ले चुके ऐसे। तो इनका नाम देवव्रत हुआ, ये भीष्म जी हुए देवव्रत। भीष्म इनका नाम ऐसे पड़ा कि शंतनु जी का चित्त सत्यवती पे आ गया था, तो सत्यवती वो अंदर ही अंदर उन्हें ये लगने लगा कि अगर मैं सत्यवती से, इतने वो उसके मोह में पड़ गए कि खाना पीना छोड़ दिया, परेशान रहने लगे। जब भीष्म यानी देवव्रत को पता चला कि मेरे पिता के मन में क्या चल रहा है, कि ओहो ये तो सत्यवती पे आया हुआ है मन, और सत्यवती के पिता ने शर्त रखी है कि विवाह मैं अपनी पुत्री से तब करूँगा अगर इसका पुत्र राजा बने तो। लेकिन वो अपने पुत्र देवव्रत के साथ में ऐसा अन्याय नहीं करना होना देना चाहते थे, तो उन्होंने इसलिए वो विवाह से मतलब दूर ही थे कि नहीं हम विवाह ही नहीं करेंगे। जब लेकिन देवव्रत को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता के लिए, उनके सत्यवती के पिता से बात करी और बोले कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम आगे पुत्री पैदा नहीं करेंगे, और शपथ लेते हैं हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। बोला ऐसे नहीं, तुम तब वो ग्रहण करो। तो उन्होंने जल लेके अपना व्रत लिया था कि हम आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे। तो वो इतनी दृढ़ यानी भीषण प्रतिज्ञा इन्होंने की थी कि जिसे भीष्म प्रतिज्ञा कहने लगे, उनसे इनका नाम पड़ गया भीष्म। इन्होंने ये भी कहा था जब सत्यवती से, शंतनु से सत्यवती के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और दोनों की मृत्यु हो गई, एक राजक्षमा योग से हो गई, एक को गंधर्व ने मार डाला, उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर इनसे पूछा था, 2, 1 के अंबिका और अंबालिका स्त्रियाँ थी, एक तो राजक्षमा से पहले ही मर गए थे, जो दूसरे वाले थे उनसे अंबिका और अंबालिका 2 स्त्रियां थी उनकी। तो इन्होंने सत्यवती ने भीष्म से कहा था कि आप इनके जरिए कोई संतान उत्पत्ति करें, क्योंकि राजा तो है नहीं कुछ। उन्होंने मना कर दिया था कि हमने, हमारी प्रतिज्ञा है तो हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। फिर उन्होंने कहा राज स्वीकार कर ले, बोला राज के पास जाने की भी हमारी प्रतिज्ञा है, हम सिंहासन स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था चाहे सूर्य अपना तेज छोड़ दे, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, इंद्र का बल खत्म हो जाए और धरती पे सब कुछ खत्म हो जाए, पर भीष्म की प्रतिज्ञा अटल है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इतनी भीषण प्रतिज्ञा इनकी थी। तो फिर सत्यवती ने जो पराशर जी से, उनके पुत्र थे पराशर ऋषि से, वेद व्यास जी, तो व्यास जी से आग्रह किया, फिर व्यास जी से आगे पांडु और धृतराष्ट्र और दासी से फिर विदुर की उत्पत्ति हुई। तो ये लोग हुए, लेकिन भीष्म जी अपनी उसके बारे में इतने मतलब भगवान के ऐसे भक्त थे, हमने इससे पहले उसमें एपिसोड में बताया था कि जब ये बाण सैया पे पड़े हुए थे तो एक बार युधिष्ठिर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी ध्यानमग्न हैं अपने कक्ष में। वो अचानक, युधिष्ठिर बड़े थे श्री कृष्ण जी से तो चले जाते थे, तो देखा ध्यानमग्न हैं तो बैठ गए उनके पास जा गए। श्री कृष्ण जी ने आँखें खोली, इन्होंने बोला महाराज आप भी ध्यान करते हैं? श्री कृष्ण ने बोला हाँ, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? वो बोलने लगी कि मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। बोले क्या बात कर रहे हैं आप? भीष्म? बोला भीष्म मेरा ऐसा भक्त है जो निरंतर चित्त मुझ में लगाए रखता है, और अभी वो मुझ में अपने मन को लगाए हुए है, तो इसलिए मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। तो उसी समय युधिष्ठिर की इच्छा हुई कि हम भीष्म जी के, ये शाम का समय था, कि हम उनको देखने चलते हैं। तो भीष्म को देखने के लिए गए। अच्छा, एक प्रसंग आता है महाभारत में कि जब सब लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए गए थे, द्रौपदी भी साथ में थी, भीष्म जी से उन्होंने पूछा था कि भाई हमें कुछ ज्ञान का उपदेश करें, तो वो ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। ज्ञान का उपदेश करते हुए द्रौपदी हंसी कि अच्छा तुम्हारा ज्ञान उस दिन कहाँ चला गया था महाराज, जब कौरव मुझे वस्त्रहीन कर रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया, ये ज्ञान कहाँ चला गया था? तब उन्होंने कहा कि ज्ञान तो मेरा तब भी था, लेकिन मैंने कौरवों की पाप की रोटी खाई थी, वो पाप का अन्न था उनका। तो अगर आप दूषित अन्न किसी का ग्रहण करते हैं तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाती है, और अब मेरा ये रक्त बह चुका है, वो जो पाप का अन्न खाए हुए का रक्त बह चुका है, तो मेरी बुद्धि जो है निर्मल हो चुकी है, तो इसलिए मैं वो ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उनको भगवान को देखते हुए उन्होंने अपना जो है शरीर त्याग किया था अपनी इच्छा से। तो ये भीष्म जी की कथा है, आगे हम राजा बलि की कथा करेंगे इसी में। तो आगे स्टोरी के लिए चलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।